नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार कर रहे हैं।
जी,
हमारे पास एक स्रोत है, ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। और इसमें जो बुनियादी सवाल है वो यही है, क्या ईश्वर है? और अगर है तो फिर उसका रूप कैसा है, स्वभाव क्या है?
बिल्कुल। और ये स्रोत नास्तिकता और आस्तिकता दोनों के तर्कों को देखता है।
हाँ, मतलब मानने वाले और ना मानने वाले, और खासकर ये विज्ञान की सीमाओं और विश्वास की भूमिका पर गौर करता है।
सही।
तो स्रोत की पहली बात जो है वो ये कि भाई सिर्फ इसलिए ईश्वर को खारिज कर देना कि विज्ञान उसे साबित नहीं कर सकता, ये शायद ठीक नहीं है।
हाँ, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी।
सोचिए ना, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी चीजें हैं, जैसे नैतिकता है या किसी के माता पिता कौन हैं, इसका विश्वास, ये सब वैज्ञानिक सबूत के बिना ही हम मानते हैं।
बिल्कुल, ये प्रयोगशाला में टेस्ट होने वाली चीजें नहीं है, पर जिंदगी इन्हीं पर चलती है।
सही।
और यहीं पर देखिए, स्रोत विज्ञान की एक सीमा की तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि आज का जो विज्ञान है वो मुख्य रूप से पदार्थ विज्ञान है।
मतलब फिजिकल चीजों का विज्ञान।
हाँ, जो चीजें भौतिक हैं, जिनका वजन है, आकार है, अणु परमाणु है, उन्हीं को जांच सकता है। लेकिन अगर ईश्वर या चेतना जैसी चीजें, मान लीजिए, भौतिक न हो, अत्यंत सूक्ष्म हो,
तो फिर ये मशीनें उन्हें कैसे पकड़ेंगी?
एग्जैक्टली, यहीं पर स्रोत कहता है कि विश्वास की जरूरत पड़ती है।
ये जो गणित वाला उदाहरण दिया है स्रोत ने, वो बड़ा दिलचस्प है, आप उसे थोड़ा समझाएंगी?
हाँ, वो तुलना बहुत अच्छी है। देखिए, गणित में हम बिंदु या पॉइंट की बात करते हैं।
हाँ।
गणित कहता है इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नहीं होती, जीरो डायमेंशन।
सही है।
पर सोचिए, पूरी ज्यामिति, पूरी ज्योमेट्री इसी बिंदु पर टिकी है।
बात तो है।
या फिर शून्य यानी जीरो को लीजिए, किसी भी अंक से भाग दें तो जवाब अनंत, इन्फिनिटी आता है।
हाँ, ये भी अजीब लगता है सोचने में।
अजीब है, पर इसके बिना गणित अधूरा है। तो स्रोत का तर्क ये है कि जैसे ये अमूर्त, थोड़े विरोधाभासी लगने वाले विचार गणित जैसी ठोस व्यवस्था का आधार है,
अच्छा,
वैसे ही शायद विश्वास या श्रद्धा वास्तविकता के उन पहलुओं को समझने का जरिया हो सकती है जिन्हें हमारे यंत्र पकड़ नहीं पाते।
तो अगर विज्ञान की सीमाएं हैं और विश्वास की भूमिका है,
हाँ,
तो फिर ईश्वर के होने के पक्ष में स्रोत क्या सबूत देता है?
यहीं पर स्रोत प्रकृति की जो अविश्वसनीय जटिलता है उसकी बात करता है। मानव शरीर का उदाहरण लीजिए।
हाँ, वो तो कमाल का है।
हमारी त्वचा सिर्फ एक वर्ग इंच, 1 square inch, उसमें करीब 72 feet लंबी नसें होती हैं।
72 feet?
हाँ, तंत्रिकाएं, और 12 feet लंबे खून की नलिकाएं, ये सब मिलकर शरीर का तापमान कंट्रोल करते हैं।
कमाल है। और वो गुर्दे वाला तथ्य है?
हाँ, गुर्दे, किडनी, ये छोटे से अंग हर घंटे हमारे शरीर के वजन से दुगना खून साफ करते हैं।
हर घंटे?
जी, और उनके अंदर जो बारीक नलिकाएं हैं वो करीब 110 किलोमीटर लंबी हैं।
110 किलोमीटर, मतलब दिल्ली से कुरुक्षेत्र जितना लगभग।
बिल्कुल। तो स्रोत पूछता है, क्या इतनी जटिल, इतनी कुशल व्यवस्था महज एक हादसा हो सकती है, या ये किसी गहरे डिजाइन, किसी इंटेलिजेंस की तरफ इशारा करती है?
लेकिन प्रकृति में और भी उदाहरण हैं, जैसे चींटियों का समाज। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो बस उनका इंस्टिंक्ट है, सहज वृत्ति, इसमें बुद्धि कहाँ है?
स्रोत इसे सिर्फ इंस्टिंक्ट से ज्यादा मानता है, वो चींटियों के पुल बनाने का तरीका।
हाँ, देखा है वीडियो में।
या मिलकर शिकार करना, भोजन बांटना, इन सबको देखता है और कहता है कि ये एक तरह की अंतर्निहित सामाजिक व्यवस्था है, एक इंटेलिजेंस है, जो सिर्फ केमिकल रिएक्शन का नतीजा नहीं लगती। ये इशारा करता है कि शायद सृष्टि में कोई नियम, कोई व्यवस्था काम कर रही है।
ठीक है, प्रकृति के अलावा स्रोत कुछ इंसानी क्षमताओं का भी जिक्र करता है जो थोड़ी हैरान करने वाली हैं।
सही कहा, और जिन्हें विज्ञान पूरी तरह समझा नहीं पाया है।
जैसे?
जैसे संत हरिदास या कर्नल टाउनशेड जैसे लोग थे, जिनका अपने शरीर के अंदरूनी कामों पर नियंत्रण था।
मतलब दिल की धड़कन रोक लेना या धीमा कर लेना।
हाँ, कुछ इस तरह का। या फिर डॉक्टर अलक मोहन माथुर का उदाहरण है, जो धातु जैसी चीजें पचा लेते थे।
ओह, ये तो सच में अजीब है।
अजीब है, और विज्ञान के पास इसकी पूरी व्याख्या नहीं है। तो स्रोत इन उदाहरणों का इस्तेमाल ये कहने के लिए करता है कि शायद चेतना, कॉन्शियसनेस, सिर्फ दिमाग की उपज नहीं है,
बल्कि एक स्वतंत्र शक्ति हो सकती है।
हाँ, शायद एक इंडिपेंडेंट फोर्स।
तो इसका मतलब ये हुआ कि स्रोत ईश्वर को किसी इंसान जैसे रूप में देखता है, कोई व्यक्ति?
जरूरी नहीं। स्रोत ये विकल्प भी खुला रखता है कि ईश्वर कोई व्यक्ति न होकर एक सर्वव्यापी नियम या व्यवस्था हो।
जैसे?
जैसे कर्म फल का सिद्धांत।
अच्छा, कर्मा।
हाँ, कर्मा, यानी हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, अच्छे का अच्छा फल, बुरे का बुरा। ये एक तरह का कॉस्मिक बैलेंस बनाने वाला नियम है।
तो ईश्वर मतलब ये नियम ही है?
स्रोत कहता है शायद ईश्वर इसी नियम या व्यवस्था का नाम हो जो पूरी सृष्टि को चला रही है, कारण और परिणाम का नियम।
तो कुल मिला के इस स्रोत से क्या समझे, मतलब अंतिम निष्कर्ष क्या है?
देखिए, ये स्रोत कोई फाइनल जवाब नहीं देता कि ईश्वर है या नहीं।
अच्छा।
ये दिखाता है कि ये सवाल शायद पूरी तरह वैज्ञानिक कसौटी पर कसा ही नहीं जा सकता। ये विश्वास का, अनुभव का, अंतर्ज्ञान का विषय ज्यादा है।
तो सबूत कहाँ ढूंढें?
स्रोत प्रकृति की बनावट में, जीवों के व्यवहार में, इंसानी चेतना की गहराइयों में संकेत ढूंढता है, लेकिन मानता है कि लैब में इसे साबित करना मुश्किल है।
और अंत में एक बहुत सोचने वाली बात कही गई है।
हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। हम पूछते हैं ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, लेकिन स्रोत कहता है शायद इससे पहले हमें ये पूछना चाहिए मैं कौन हूँ।
मतलब सवाल पूछने वाला कौन है?
हाँ, ये जो पूछ रहा है वो कौन है, कहाँ है, कैसा है, शायद खुद को गहराई से जानना वही ईश्वर को जानने का रास्ता हो।
आत्मज्ञान से ईश्वर ज्ञान तक।
बिल्कुल। सेल्फ नॉलेज एज द की टू गॉड नॉलेज, ये एक विचार है जिसपे हम सब सोच सकते हैं।
वाकई बहुत दिलचस्प चर्चा रही।